جس تمہارا کرم ہے آپ کا آل کی میرے اساس کیا ہے عمل اساس کیا ہے بجز ندامت کے پاس کیا ہے
Youngstown, Toronto. The views expressed on the preceding program may not necessarily be those of the owner or management of WTOR radio station.
सिटी ऑफ ब्रैम्पटन 10 म्युनिसिपल बॉर्डर सीमावां दी समीक्षा कर रहा है। शहर नूं बचाउण जिवें कि आबादी वधदी है, सिटी दा उद्देश निरपक्ष अते बराबरी दी स्थापना करना है। निवासियां दी संतुलन नुमाइंदगी वाले बॉर्डर तुहाडी फीडबैक नूं आकार देण लई बहुत जरूरी है। साडा छोटा सर्वेक्षण करन लई brampton.ca/wbr ते जाओ अते आउण वाले व्यक्तिगत तौर ते इवेंट जिथे तुसी सिटी स्टाफ तों सवाल पुछ सकदे हो। वैबसाइट इक वार फिर brampton.ca/wbr।
Sodi Furniture Store Clearance. Saving, saving, saving.
Sale, sale, sale.
Sodi Furniture Stock Clearance.
Everything on floor, to go. Warehouse Furniture Sale.
Ji haan, Sodi Furniture lagat ki kimat se kam kimat par furniture khareediye. Furniture ki is sale ka fayda uthane ke liye, Sodi Furniture Showroom 142 Kennedy Road South in Brampton. Huge sale. Jo le gaya, so le gaya.
Jo reh gaya, so reh gaya.
Sodi Furniture. नया साल नया फर्नीचर 9058747171 सोडी फर्नीचर स्टोर
क्लियरेंस ट्रकिंग वाले वीरो ध्यान नाल सुनो ट्रक जिद्दा दा भी चलाउंदे हो मैनुअल जा ऑटोमेटिक क्विक ट्रक ल्यूब चेते आही ना रखियो ट्रक दी बढ़िया सर्विस लई क्विक ट्रक ल्यूब लॉजी तीजी लोकेशन भी खोलती है एग्जिट 579 फ्रॉम हाईवे 401 इन नापनी आहो जी कोई अपॉइंटमेंट नहीं ड्राइव थ्रू फैसिलिटी एग्जिट 579 फ्रॉम हाईवे 401 इन नापनी क्विक ट्रक ल्यूब द वन स्टॉप शॉप 519-622-0660 या quicktrucklube.com QTL बिकॉज वी केयर क्विक ट्रक ल्यूब
शॉपर्स हो जाइए तैयार लीजस कॉस्मेटिक्स की बड़े ब्रांड्स की बड़ी सेविंग्स वाली बड़ी क्रिसमस वेयरहाउस सेल खास आपके लिए आ रही है वर्ल्ड फेमस ब्रांड्स के परफ्यूम्स कॉस्मेटिक्स एंड स्किन केयर हेल्थ एंड ब्यूटी प्रोडक्ट्स फैशन पर्सेस लगेज डिजाइनर सनग्लासेस नेल एंड हेयर कलर्स और भी बहुत कुछ 80% तक की सेविंग रहेगी बस आपको आना है 135 कॉमर्स वैली ड्राइव ईस्ट मार्कम ध्यान रहे सेल इज फ्रॉम नवम्बर 16 टू दिसम्बर 8 फ्राइडे सैटरडे और संडे से मंडे Lisa's Warehouse Sale, yani zyada savings for less. Visit lisascosmetics.com. इस महीने मेरी सेविंग $400 हुई है
मेरी सेविंग $350
मेरी सेविंग सिर्फ $100
और मेरी सेविंग सबसे ज्यादा हुई है मैंने सेव किए हैं $1,775
क्या चमत्कार किया मुझे भी गुड़ सिखाओ ना
कोई बात सादा सी है हमारे पास दो गाड़ियाँ और एक घर है और इन सब की इंश्योरेंस मिलाकर मैंने जबरदस्त सेविंग की है और ये जादू किया है ऑल स्टेट पिकरिंग एजेंसी के राजा बादशाह ने आप भी अपनी गाड़ी और घर के इंश्योरेंस में खूब सेविंग कर सकते हैं टर्म एंड कंडीशन अप्लाई ऑल स्टेट पिकरिंग एजेंसी के राजा बादशाह 6472903773 6472903773
770 AM دی نشریات سنن تے حالات حاضرہ تو با خبر رہن دے واسطے نیوز انفارمیشن انالیسس الیکٹرک گڈیاں دے وچ ای آواز آفیشل ایپ یا ساڈی ویب سائٹ eawaz.com لوکل نمبر 6478724900
چاندنی
بینکویٹ ہال
انٹیلیجنٹ چوائس لوکیشنز Sound System Innovations Chandni Banquet Hall
30 years of hospitality experience corporate event exhibition expo or any celebration
indoor and outdoor golf course facilities Chandni Banquet Hall for appointment call today at 905-458-8888 905-458-8888 or visit chandnivictoria.ca Chandni
ओह दुबई जाना है
वो क्यों
बेटी की शादी है
सोने और डायमंड की यूनिक ज्वेलरी की खरीदारी करनी है।
छोड़ो जी, एक दफा चोपड़ा ज्वेलर को विजिट करो, दुबई से बेहतर है। गोल्ड, जड़ाऊ जेवरात, डायमंड, जड़ाऊ डायमंड ज्वेलरी, चूड़ियाँ, कड़े, पेंडेंट, हर जेवर यूनिक है और बेशुमार वैरायटी है। मजे की बात है, डिस्काउंट्स भी बहुत सारे हैं। किस किस का बताऊं? सीइंग इज बिलीविंग।
एड्रेस दें।
1066 एल्बियन रोड, एल्बियन इज़लिंगटन की नुक्कड़ पे। व्हाट अ ब्यूटीफुल कलेक्शन, चोपड़ा ज्वेलर्स। 4167447534। कनाडा में दुबई, चोपड़ा ज्वेलर्स। मोमिन हलाल मीट एनिवर्सरी सेल, आप लोगों ने बहुत ताबुन किया। इस खुशी में हर चीज सेल के ऊपर है। लैम शोल्डर 699 पर पाउंड, बीफ बोनलेस 599 पर पाउंड, चिकन कीमा या चिकन थाइस 399 पर पाउंड, चिकन लेग 199 पर पाउंड। हर चीज ऑन सेल मोमिन हलाल मीट एनिवर्सरी सेल। और हाँ, 22 नवंबर को तो चाय भी होगी, जलेबियाँ भी होंगे, समोसे भी होंगे। पहुँचिए मोमिन हलाल मीट, 1010 ग्रीन क्रेसेंट इन मिसिसागा, जस्ट नॉर्थ ऑफ एग्लिंटन, ऑन टेरी फॉक्स।
अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जनाब, बिल्कुल गर्मी के जानवर सर्दी में भी आ जाते हैं कभी कभी, क्योंकि मौसम आजकल जो है काफी आउट हुआ है, किसी को पता ही नहीं चल रहा, दरख्तों को नहीं पता चल रहा कि जनाब ये अभी खजा आई हुई है कि सर्दी आ रही है। इस तरह इंसानों को भी नहीं समझ आ रहा है कि जनाब ये गर्मी के दिन आ गए हैं कि सर्दी के दिन नहीं। जनाब बिल्कुल, ये लकी ड्रॉ निकला था शाजिया जी का, जिसकी बिना पर जो है वो हमें अलाउ किया गया कि अब आपके साथ जो है रोजाना मंडे टू फ्राइडे 5 बजे से लेकर तकरीबन 6 बजे तक रहेगा। तो ये एक घंटा बहुत कीमती है, इसको बहुत एहतियात से इस्तेमाल करना है, गलत हाथों में नहीं जाने देंगे। और आपको मालूम है, आप लोग मुझे भूले नहीं होंगे, मैं आपका होस्ट आमिर अहमद, और हमारे साथ रंगा रंग खबरें। अब थोड़ा सा स्टाइल चेंज करते, वो गर्मियों का था खट्टी मीठी, क्योंकि बंदा खट्टी मीठी चीजें खा भी रहा था, पेट खराब हो गया, कोई बात नहीं, गर्मी आती गला खराब नहीं होता। सर्दियों में अगर आपने खट्टी मीठी चीजें खा ली तो आपका गला खराब हो जाएगा, आप बीमार पड़ सकते हैं, फ्लू भी हो सकता है। तो रंगारंग खबरें लेकर आ गई हैं विद साउंड इफेक्ट, साउंड इफेक्ट में कोई तब्दीली नहीं है, मैंने म्यूजिक चला दिया। तो आइए उनको खुश आमदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू, कैसी हैं आप?
WS, हम ठीक हैं।
अच्छा ठीक हैं आप?
यस।
अच्छा मुझे लगा शायद सर्दियों में आपके हालात सही नहीं होते।
नहीं, खराब हो गए हालात।
हालात खराब हो गए। अच्छा मुल्क वाले हालात तो नहीं है, ये दूसरे हालात हैं।
ये सारे हालात हैं जो ये मिलके जो वो उसका कलेक्शन है ना, वो खराब है सारा।
अच्छा शायद जी, सबसे पहले मैं एक बात आपको आज बता दूं।
हाँ।
जो कि मैं बहुत सीरियसली इस पर काम,
क्योंकि
देखें मैं बहुत हलाल हराम मैं बहुत 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 हाँ। एहतियात करता हूँ।
अच्छा, आंखें ना दिखाओ।
तो अब जो है वो आपने VPN यूज नहीं करना।
बिल्कुल हराम है सर,
ये हराम हो गया।
फोन हराम है, एसी हराम है, गाड़ी हराम है, सब जो चीज गोरे ने बनाई है ना, ये अहले मगरब बनाए हुए आले सारे खराब है सर और हराम है।
अच्छा ये तो खैर, अब आप इसको मुझे
अहले मगरब के सारे आले हराम है।
नहीं, अहले मगरिब तो अभी तो मगरिब की अजान लगा है,
अभी लगाई नहीं है।
नहीं, मगरिब हो गई है ना, मैंने सामने मगरिब पढ़ लिया तभी। अच्छा। आपके सामने है, लेकिन VPN हराम हो गया अब आपके लिए ना। तो वो कहते हैं कि जनाब जो VPN के जरिए, बेसिकली उनको VPN से एतराज नहीं है, VPN पेज के जरिए जो मवाद देखा जा रहा है, वो जो सर्च करते हैं, वो इंडियन की एक हीरोइन है ना, जिसको बड़ा गूगल पे भी सर्च आया था, सबसे ज्यादा सर्च की जाने वाली खातून थी 2000 के टाइम पे, कोई इसका पूरा एक वो आया था, आर्टिकल आया था पाकिस्तानी में, सबसे ज्यादा।
मैं
नाम नहीं पता, बता दिया तो
मरे जा रहे हैं उसको मिलने के।
اس طرح کی جو ہے نا وہ مواد دیکھنے پہ وی پی این یوز ہوتا ہے,
پورنوگرافک کنٹینٹ اس کو
گرافک کانٹینٹ اس کو کہتے ہیں کہ بچے نہ دیکھیں جس کو,
سب سے زیادہ تو دیکھا ہی پاکستان میں جاتا ہے ساؤتھ ایسٹ ایشیا میں.
لیکن میں ایک اور بات, طارق جمیل صاحب آپ کو پتا ہے وہ مفتی تو نہیں ہے,
انہوں نے کہا حرام نہیں ہے,
انہوں نے کہا نہیں, انہوں نے کہا کہ اگر وی پی این کو آپ حرام کر دیں گے تو وی پی این سے زیادہ تو جس فون میں دیکھی جاتی
وہ بھی حرام ہے نا. ہاں تو وہ کہتے ہیں وہ نہیں ہے. دیکھو جی
یوز جا رہے ہو یار, کتنے
دیکھو یار جس وقت وہ آیا تھا نا وہ وی سی آر آیا تھا اس کو بھی کہہ دیا تھا کہ یہ حرام
نہیں, وی سی آر سے اور پیچھے چلی آیا تھا لاؤڈ اسپیکر,
ہاں لاؤڈ اسپیکر بھی حرام تھا, سب کچھ حرام تھے نا. تو اب ان کو بولو کہ جی یہ تو ساری چیزیں جو ہیں یہ تو اہل مغرب نے بنائی ہیں, اب آپ میں سے تو کسی کے ہاتھ میں فون بھی نہیں نظر آنا چاہیے, یہ جو لمبی لمبی پجیرو گاڑیاں ہیں اس میں بھی آپ نے, یہ تو وہ جو بڈھسٹ ہیں ساؤتھ کورین ہیں یہ تو وہ بنا رہے ہیں نا گاڑیاں, تو بڈھسٹ ہیں وہ تو بالکل ہی کافر ہیں, ان کی چیزیں آپ نے نہیں یوز کرنی. پھر یہ جو ماڈرن گھر ہیں بھائی, آپ جھونپڑے میں جا کے رہو نا, مولوی ہو جھونپڑے میں رہو, یہ ماڈرن گھر کا جو اسٹرکچر ہے نا یہ اہل مغرب کا ہے, تو اس میں آپ نے نہیں رہنا, ٹھیک ہے, یہ غلط ہے. پھر آپ یہ جو ٹی وی پہ خبریں سن رہے ہو یہ نہیں آپ سن سکتے,
خبریں نہیں سنیں
کیوں؟ نہیں کیونکہ ٹی وی تو حرام ہے,
نہیں ٹی وی حلال ہے ہمارے وہاں, حلال ٹی وی آتا ہے
تو مطلب ہے کس کے, یہ کمپیوٹر جس پہ کہ آپ ساری ای میلز بھیج رہے ہو, ای میل بھی حرام ہے, کمپیوٹر بھی حرام ہے, سب کچھ حرام ہے.
اچھا یہ سب چیزوں پر میں ابھی آدھا آرٹیکل میں نے ان کا پڑھ لیا ہے, حامد میر صاحب کا آج آرٹیکل, انہوں نے بہت زبردست بہت ڈیٹیلڈ آرٹیکل انہوں نے جو ہے وہ جنگ میں ڈیلی جنگ میں لکھا ہے انہوں نے, وہ میں کہتا ہوں کہ آپ اس کو پڑھیں, انہوں نے پوری ہسٹری پیچھے سے لے کر بہت پیچھے سے لے کر انہوں نے سٹارٹ کیا کہ کس طریقے سے اس وقت کے ٹائم پہ بھی کئی ایسے, جیسے انہوں نے شروع کیا تھا ابو حنیفہ کے ٹائم سے بھی انہوں نے شروع کیا اور بھی پیچھے مالکی صاحب کا بھی ذکر کیا, سب کا ذکر کیا, انہوں نے کہا کہ ان کو ایک دفعہ کہا کہ یار آپ نے جو ہے وہ قاضی کی پوزیشن لینی ہے, انہوں نے انکار کر دیا, ان کو جیل میں ڈال دیا گیا, یہاں تک ان کو کوڑے بھی مارے گئے, سب کچھ کیا گیا, لیکن یہ لوگ بھی ہوتے تھے کہ جو عہدے نہیں لیتے تھے اور سچ اور جو حق ہے جو شریعت ہے اس کے نافذ کے لیے چاہے جیسا بھی عہدہ ہو وہ جو ہے نہیں قبول کرتے.
ہم کو ابو حنیفہ کے زمانے میں جانے کی ضرورت نہیں ہے, ہم تو چونکہ انڈین سب کانٹیننٹ میں ہے نا, انڈین سب کانٹیننٹ میں ہی آپ لے لیں. جس وقت سر سید احمد خان نے کہا کہ ہم جو ہے انگریزی تعلیم بچوں کو دیں گے,
کیا فتوے آئے تھے
کہ یہ بھی کافر ہے,
یہ بھی کافر
اور یہ انگریزی جو سکھائے گا, یہ انگریزی زبان بھی کافروں کی زبان ہے تو اس کو سیکھنے والے بھی کافر ہیں, ٹھیک ہے جی. یعنی رسول جو ہے ہمارے وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ کو تعلیم کے لیے چین بھی جانا, تو چین کیا مسلمان کنٹری تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں, کافر کنٹری تھا نا جی, تو وہاں تک جانا پڑے تعلیم کے لیے تو کوئی
مسلمان سمبولک تھا,
اور آپ ہاں سمبولک تھا, اور آپ دیکھیں کہ قرآن کا پہلا لفظ کیا ہے, اقرا,
بالکل پڑھ,
ٹھیک ہے کہ
پڑھ پڑھ نا, بالکل.
اب اگر رب سے بھی آپ بڑے ہیں, آپ خدا سے بڑے ہیں, آپ جو زمین کے بونے ہیں آپ خدا سے بھی بڑے ہیں, نعوذ باللہ, آپ رسول سے جو آگے نکلنے کی کوشش آپ کر رہے ہیں, آپ نے اسلام کس کو دیکھ کے فالو کرنا ہے؟ میرا تو صرف ایک بیسک کوشچن ہے کہ آپ نے اسلام ملا عمر کو دیکھ کے فالو کرنا ہے کہ آپ نے خدا اور اس کے رسول کو دیکھ کے فالو کرنا ہے؟ بھائی آپ مجھے صرف یہ بتا, اگر تو آپ نے خدا اور اس کے رسول کا اسلام فالو کرنا ہے نا, تو اس میں تو یہ چیزیں نہیں ہیں, اس میں تو ہے کہ آپ تعلیم اپنی بڑھائیں,
نالج بڑھائیں.
سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اس وقت چونکہ آپ کے ملک میں نوکریاں نہیں ہیں, بچے انٹرنیٹ بیسڈ کام لے کے بیٹھے ہیں,
جو فری لانسر
جو فری لانسرز ہیں, دوسرے بھی کمپنیز بھی,
کارپوریٹس
بھی, جو ہیں جن کے بیک آفیسز جیسے جو
پوری دنیا میں ہیں,
قطر میں ہے, سعودی میں ہے, یو اے ای میں ہے, وہ اس نے بیک آفس پاکستان رکھا ہوا ہے, لاہور اور کراچی بیسکلی
کاسٹ افیکٹو پڑتا ہے ان کو پاکستان میں لیبر,
کیونکہ لاہور کراچی میں جو لڑکے لڑکیاں بیٹھے ہیں وہ ان کے وہ اس طرح کے بیک آفس کے کام کر سکتے ہیں جو کہ انٹرنیشنل لیول کے ہیں, ٹھیک ہے. اچھا اب تو کوئی دوسرے سٹیز والے ہیں وہ میرے سے
بڑے
مائنڈ کر جائیں گے,
بڑے
بہرحال کراچی لاہور سے زیادہ بیک آفس رکھے ہوئے ہیں ان لوگوں نے, اب ان کمپنیوں کو نقصان ہے. آپ دیکھیں کہ آپ کے اپنے ملک کو کتنا بے تحاشا نقصان ہے, امپلائمنٹ آپ نہیں دے رہے, جنہوں نے امپلائمنٹ اپنی خود جنریٹ کی ہوئی ہے اس کو آپ ہرٹ کر رہے ہیں, اپنے ملک کی جگہ جگہ بھیک کا کٹورا لے کے پھر رہے ہیں, اور پھر بھی آپ یہ جو دو چار کوئی آپ کی کمپنیاں آئی ٹی کی چل رہی ہیں جس میں آپ اتنے دنیا میں پیچھے رہ گئے اس کو بھی آپ جو ہے وہ خراب کر رہے ہیں. خود جو شہباز شریف صاحب جو ہوز دا پرائم منسٹر آف دا کنٹری, ہیم سیلف یوزز ایکس اپنے سارے میسجز دیکھنے کے لیے
وی پی این کے تھرو,
ہاں وی پی این کے تھرو, بی بی زرداری
یوز کر رہے ہیں تمام ہی پولیٹیشین, آج کافی بات ہو رہی تھی,
ہاں یہ تو اب پولیٹیکل ہیڈز ہیں نا, تو میں ان کی بات, جو عمران خان صاحب ہے وہ تو کرتے ہی کرتے ہیں, ان کی جو پارٹی کرتی ہے, آپ خود جو گورنمنٹ میں بیٹھے ہو ایک جو پولیٹیکل پارٹی کو ہرٹ کرنے کے لیے کے چکر میں آپ پورے ملک کو ہرٹ کر رہے ہو, پھر آپ کہہ رہے ہو ہمیں ملک سے بھی محبت ہے اور ملک کے نوجوانوں سے بھی, یہ ملک کے نوجوانوں سے محبت ہے آپ کی؟ یہ محبت ہے
नहीं इनको समझ नहीं आ रही। आज भी आपने देखा होगा, जाहिर आज की न्यूज में भी होगा कि जो इमरान खान को और कई सारे लीडरों को आज तहरीरी फैसला दे दिया, उन्होंने उनको बरी कर दिया, जो कि मार धाड़ और उनके कामों में जो केस चल रहा था, आज पहले बरी तो कर ही था लेकिन आज पूरा तहरीरी फैसला उन्होंने दे दिया। बजाय मुझे लग रहा है कि हालात पाकिस्तान के कंट्रोल से उनको लग रहा है कि शायद चीजें आने वाले वक्त में कुछ तब्दीली की नजर आ रही है उनको, तो वो शायद जा रहा है कि
हम आपको बिहाइंड द जो स्टोरी है ना, स्टोरी बिहाइंड द हेडलाइन अब मैं आपको बताती हूँ।
जी जी बिल्कुल बताइए।
स्टोरी बिहाइंड द हेडलाइन ये है कि एक तो ट्रंप साहब की जो एडमिनिस्ट्रेशन में बंदे हैं उन्होंने बहुत क्लियरली, क्योंकि जुल्फी बुखारी कॉन्स्टेंटली उनके साथ काम कर रहा है, जुल्फी बुखारी के मैंने आपको पहले ही बताया था कि ट्रंप की फैमिली के साथ फैमिली रिलेशन है, ठीक है जी। एक तो उसकी वजह से उन्होंने बहुत क्लियरली इनको मैसेज दे दिया है कि जैसे ही ट्रंप साहब आएंगे वो चाहेंगे, अभी तो वो वर्ड चाहेगा यूज कर रहे हैं ना, तो फिर वो करेंगे भी सख्ती से, चाहेंगे कि इमरान खान की जो पार्टी के साथ या उसके साथ किया जा रहा है उसको आप ठीक करें। अभी तो उन्होंने वर्ड्स बड़े प्यारे यूज किए हैं ना कि ठीक करें, उसके बाद वो क्या वर्ड यूज करेंगे वो आप सोचें जिस वक्त वो गवर्नमेंट में आएंगे, ठीक है जी। उसके अलावा जो सबसे बड़ी खबर जो किसी ने ब्रेक नहीं की, आज हम 770 पे आपके सामने ब्रेक कर रहे हैं जी, बिगेस्ट न्यूज जो हम 770 पे ब्रेक कर रहे हैं, ब्रिटिश फॉरेन सेक्रेटरी डेविड लैमी, उन्होंने लेटर लिख दिया है कि भाईजान हम बहुत गौर से देख रहे हैं जो आप इमरान खान और उसकी पार्टी के साथ कर रहे हो और इसके रिपरकशंस हो सकते हैं।
अब वो नैरेटिव बिल्ड हो रहा है
इनको सही, ब्रिटिश फॉरेन सेक्रेटरी ने ये कह दिया है। इसका क्या मतलब, इस वक्त यूरोप के अंदर आपको बड़ी कौन सी नजर है, एक ब्रिटेन और एक यूएस, राइट, जर्मनी और फ्रांस भी उसके नीचे आते हैं, ठीक है जी, ये दो। तो अगर ये दो मेन गवर्नमेंट्स हैं, एक यूएस और एक यूके, वो कह रही है कि भाईजान आण भी हो ट्रंप साहब नू फिर थोड़ा हिसाब किताब उसी करने हैं, तो भाईजान अब पाकिस्तान में ना फुर्तियां पड़ी हुई है, तकलीफ हुई हुई है, अब हलचल हुई हुई है। ओहो, और इसरो कहो जी इमरान खान नू सॉरी बोले, फटाफट सॉरी बोले May 9 के लिए, हम इसको बोलते हैं जी हम तुझे निकाल
के। एक साल की चिड़िया ने तो ये भी आपने भी पढ़ी होगी खबर सुना दी उनकी चिड़िया ने कि इमरान खान को जबरदस्ती जहाज में डाल के भेजा जाएगा।
अब वो तो खैर उन वो तो पिछले ये तो नजम सेठी साहब की आप बात कर रहे हैं, पिछले 6 या 7 महीने से नजम सेठी साहब के आप जितने वीलॉग्स हैं वो देख लें, नहीं यूट्यूब की जो है वो देख लें, झूठ पे झूठ बोलते जा रहे हैं वो। उनको किसी ने कहा हुआ है कि आपने झूठ बोलना है और आपने ये झूठ का एक नैरेटिव जो है वो बिल्ड करना है, तो नजम सेठी साहब तो कॉन्स्टेंटली झूठ बोल रहे हैं। एक एक प्रिडिक्शन पिछले 6 महीने में उनकी गलत हुई है, एक एक प्रिडिक्शन। आप मुझे किसी भी उनके जो है वीडियो प्रोग्राम का मुझे हवाला दे दें, मैं आपको बताऊंगी कि उन्होंने क्या कहा और फिर वो कैसे गलत निकला। हर बात झूठ बोल रहे हैं उनकी, तो खैर बात छोड़ दें आप, लेकिन मेन डेवलपमेंट पीछे ये हो रही है। जनवरी के महीने से पहले अब एस्टेब्लिशमेंट को हाथ पैर पड़े हुए हैं पाकिस्तान में, वो कहते हैं किसी तरह इस बंदे को तोड़ो, इसको समझाओ, इसको झुकाओ, हमारी भी इज्जत रह जाए और जो है हम इसको छोड़ भी देंगे।
मुझे लग रहा है इस पर जो ज्यादा कोशिश की जा रही है किस तरीके से इसको सजा दिलवा दी, क्योंकि मेन नैरेटिव ये है कि वो सजा जो है वो कोर्ट से नहीं आ रही,
अब दे नहीं सकेंगे। अब जो मैंने आपको बताया पीछे की खबर,
अब लेट हो गया,
डेविड लैमी का जो लेटर आ गया है ना जो उसमें उसने बात कर दी है, इसका मतलब है कि उसको कोई फोर्सेस जो है उन्होंने कहा है। इससे भी बड़ी खबर मैं आपको बता दूं कि इस वक्त पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट, एक और मैं आपको ब्रेकिंग न्यूज बता देती हूं, पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट इस वक्त पेंटागन के साथ भी काम कर रही है और इस वक्त MI6 जो है उसके साथ भी काम कर रही है। जिन ये दो वो अदारे हैं जिनकी बड़ी शबाशी होती थी हमारे मुल्क में डिक्टेटर जो होते थे उनको, मिलिट्री डिक्टेटर, वो इस वक्त उनका भी हाथ अब इनके साथ, वो कह रहे हैं भाईजान नहीं अब हम अब हमारा तुम्हारे साथ प्यार नहीं है,
बिल्कुल ठीक,
अपने मुल्क में चीजें चेंज करो। और आप मेरी बात ये बेशक नोट करना चाहते हैं, हम ये सारी बातें थोड़े दिनों में आपके सामने आ जाएंगी और भी खुल के, और आप देख रहे हैं। चलो जी
हम गर्म खबरें सुना दें,
गर्मा गर्म खबरें शुरू करते हैं जनाब। दिस पार्ट ऑफ द प्रोग्राम इज बीइंग ब्रॉट टू यू बाय मोमन हलाल मीट एंड ग्रोसरी। इनकी फर्स्ट एनिवर्सरी की जो सेल थी उसमें बड़ी जबरदस्त किस्म के ये जो है इन्होंने डिस्काउंट्स दिए हुए हैं, तो आप जा सकते हैं, इसमें चाय जलेबी समोसा आपको कॉम्प्लीमेंट्री मिलेगा। त्यामे रसी बैठे थे की कर रहे हैं, चलो यार जलेबी खा लीजिए, हैं जी। अच्छा कल हमने इधर अरफा बाजी और माजी भाई को बिठाना है, हमने जलेबी खाने जाना है। हाँ जी, तो आप जाएं, और अगर आपको और ज्यादा डिटेल्स चाहिए तो वसीम साहब को आप कॉल करें 4168548962। और जनाब अगर आपको अफोर्डेबल होम एंड ऑटो इंश्योरेंस के रेट्स चाहिए, जैसे कि आमिर को मिले हैं 1775 उसके बचाए हैं, हमारा तो जो है सिर्फ 400 اور معصوم ذیشان کا 100 ڈالر انہوں نے بچایا ہے. تو اگر آپ کا بھی ان کے ساتھ پیار ہو جائے گا عامر جیسا تو راجہ بادشاہ جی آپ کے پیسے بہت ڈھیر سارے پہے بچائیں گے. ان کا نمبر ہے 6472903773 اونٹاریوز لارجسٹ لال پاکستانی بفے ولیج ٹیس. اس پہ جائیں جناب, دو ان کے اب ریسٹورینٹس ہیں, ایک مسساگا میں ایک اوکول میں. فیصل چٹا صاحب سے کال کر لیں, بات کر لیں اور پھر ان کے ساتھ جو آپ بیٹھ کے کھانا بھی مزے کا کھا سکتے ہیں. ٹھیک ہے جی, اوکے جی. سب سے پہلی تو ہماری جو خبر ہے جی وہ ٹوڈو صاحب جو ہے ان کی ملاقات آج ہوئی ہے G20 سمٹ میں بائیڈن صاحب کے ساتھ برازیل میں, اور اس کے ساتھ ساتھ ان کی ملاقاتیں جاپنیز پرائم منسٹر شگیرو اشیبا جو ہیں ان کے ساتھ بھی ہوئی ہے. اس کے ساتھ وہ ملے ہیں سب سے پہلی دفعہ جب سے یہ میکسیکن پریزیڈنٹ بنی ہیں کلوڈیا شین بوم, ابھی تک ان کی ملاقات نہیں ہوئی تھی. تو ان کے ساتھ بھی ٹوڈو صاحب نے آج ملاقاتیں کی ہیں. اس کے علاوہ انہوں نے بڑے کنسرن شو کیے ہیں کہ یہ جو چائنیز انویسٹمنٹ میکسیکو میں بڑھتی چلی جا رہی ہے اس کے اوپر ان کا کنسرن ہے, کیونکہ آپ کو پتا ہی ہے کہ جو یہ بیجنگ کے ٹریڈنگ پریکٹسز ہیں ان کو یہ لوگ پسند زیادہ نہیں کرتے ہیں. اور ٹرمپ صاحب نے تو اناؤنس کر دیا ہے کہ میں جو ہے بیجنگ پہ 60% جو ہے وہ لگاؤں گا, ٹیرفز لگاؤں گا اس کے جو ہے ایکسپورٹس کے اوپر, سوری امپورٹس پہ جو ہے چائنا کی. اس کے ساتھ ساتھ جو ہے ابھی آج تھوڑی دیر میں ٹوڈو صاحب کی ملاقاتیں جو ہیں برٹش پرائم منسٹر کیئر سٹارمر کے ساتھ اور اٹالین پرائم منسٹر جورجیو میلونی, اسپینش پرائم منسٹر پیڈرو سانچیز کے ساتھ بھی ان کے ساتھ ہوئیں گی. اس میں جو ایک مین ایونٹ میں یہ پارٹیسپیٹ کریں گے ٹوڈو صاحب وہ ایک سمٹ ہے وچ از ہوسٹڈ بائی برازیلین پریزیڈنٹ لوئی انیسیو لولا, اور اس پہ فوکس جو رہے گا وہ ہنگر اور پاورٹی پہ رہے گا. ٹوڈو صاحب نے آج جناب بالکل اس چیز کو مانا ہے کہ جو امیگریشن پروگرامز تھے اس کے اندر بڑی ان کی غلطیاں رہیں, لیکن اس میں انہوں نے جو ہے وہ بلیم کیا ہے بیڈ ایکٹرز کو. آپ کو پتا ہی ہے کہ مارک ملر صاحب نے ابھی تھوڑے دن پہلے جو اناؤنسمنٹس کی تھی کہ ہم بہت سارے چینجز لے کر آ رہے ہیں, تو اسی سلسلے میں یہ بات کر رہے تھے. ٹوڈو صاحب نے جو 7 منٹ کا ایک یوٹیوب ویڈیو جو ہے وہ کیا, انہوں نے کہا جی کہ لاسٹ 2 ایئرز میں ہم چاہتے تھے کہ پی آر اسٹریم جو ہے اس کو ریڈیوس کیا جائے 20% تک, 2,365,000 in 2027. ذیشان جو مارک ملر کے ساتھ تصویر ہے ان کی وہ دکھائیں پلیز, کیونکہ پالیسی جو تھی اناؤنس کی تھی مارک ملر صاحب نے. تو ٹوڈو صاحب جو ہیں انہوں نے کہا جی کہ جس وقت ہم پینڈیمک لاک ڈاؤن چل رہے تھے تو ہم سوچ رہے تھے کہ شاید لیبر مارکیٹ جو ہے اس میں زور لانے کی ضرورت ہے اور کچھ لوگوں کی جو ہے زیادہ ضرورت پڑے گی, لیبر کا شارٹیج نہ ہو جائے. تو اس لیے جب یہ گیا تو پھر اس کے بعد آ گیا فل بلون ایک ریسیشن آ گیا, اور ہم چاہتے تھے کہ یہ جو ہے اس کو ہم اپنی مارکیٹ کو افلوٹ رکھیں, لیکن کچھ بیڈ ایکٹرز جو تھے انہوں نے اس کا ایڈوانٹیج لیا, انہوں نے یہ اس پہ پروفٹس بنایا, انہوں نے یہ جو سسٹم ہے اس کا مذاق بنایا, اس کا فائدہ اٹھایا. اور خاص طور پہ وہ کہتے ہیں بہت سارے کالجز اور یونیورسٹیز جو ہیں انہوں نے انٹرنیشنل اسٹوڈنٹس جو ہیں ان سے بڑے فائدے اٹھائے, بالکل راک باٹم پہ تھے لیکن یہ ان سے انہوں نے پیسے بنانے کی بڑی کوششیں کی, کیونکہ آپ کو پتا ہی ہے کہ انٹرنیشنل اسٹوڈنٹس بہت ساری فیسیں دیتے ہیں. اسکیمرز جو تھے انہوں نے پھر ولنریبل امیگرینٹس جو ہیں ان کو جھوٹے خواب بھی دکھائے سٹیزن شپ کے, اور پوسٹ پینڈیمک بوم جو تھا وہ جب کول ہونے لگا تو ظاہر ہے کہ لیبر کی بھی اتنی ضرورت نہ رہی, اور فیڈرل گورنمنٹ کو اسی وقت ایکشن لینا چاہیے تھا, لیکن سوری ہم تھوڑا لیٹ ہو گئے, لیکن اب ہم اس کرائسس کو ڈیل کرنے کی کوشش جو ہے وہ کر رہے ہیں, اور یہ ہولے ہولے ہمیں ظاہر ہے کہ امیگرنٹس کی ضرورت ہے لیکن اس کو ہولے ہولے انکریز کریں گے. ابھی تھوڑے دن پہلے جو میری بھی ملاقات ہوئی تھی مارک ملر صاحب سے جو امیگریشن منسٹر ہیں ان سے, میں نے بھی پوچھا تھا کہ یہ بہت سارے لوگ جو اب اسائلم سیکنگ کرنے لگے ہیں ادھر ہی کینیڈا میں رہنے کے لیے, تو انہوں نے یہی کہا تھا کہ جو بھی کوئی یہاں پہ بھی پڑھنے کے لیے آتا ہے اس کا جو ہے وہ واپس اس کو جانا چاہیے, اور اگر وہ یہاں پہ آنا چاہتے ہیں ایک تو نمبر ون لیگل طریقے سے آئیں اور پھر پورا جو ڈیو پروسیس ہے اس کو فالو کر کے آئیں, مارک ملر صاحب نے کہا تھا. اچھا اس سلسلے میں پی اے پالیا صاحب سے جب پوچھا گیا انہوں نے کہا جی میں کیا کہوں, ٹوڈو صاحب نے تو خود ہی اپنی امیگریشن پالیسی کے اوپر اعتراض کر لیا ہے, تو اب وہ کہہ رہے ہیں کہ جو انہوں نے سسٹم بگاڑ دیا اس کو فکس کریں گے, تو ہم سے کیا ایکسپیکٹ کرتے ہیں, ہم کیا کہ ہم تو بڑے دنوں سے کہہ رہے ہیں کہ ہمارا سسٹم بروکن ہے. تو جناب بڑا اعتراض جنتی ٹوڈو بیچارے پہ ہوا, 9 لوگ زخمی ہوئے ہیں, 2 اس میں سے بہت ہی کریٹیکلی جو تھے وہ زخمی ہوئے ہیں جب ایک سٹولن گاڑی کا کولیژن ہوا ہے ٹی ٹی سی کی بس کے ساتھ ان نارتھ یارک آن بیتھر اسٹریٹس اینڈ ولسن ایونیو. پولیس نے کہا کہ ایک بلیک ایس یو وی اور ایک وائٹ بی ایم ڈبلو جو تھے وہ ٹریول کر رہے تھے بڑے ہائی اسپیڈ پہ ولسن ایونیو پہ, تب یہ انٹرسیکشن جو بیتھر اسٹریٹ کا ہے اس پہ جب پہنچے تو بلیک ایس یو وی جو ہے وہ کلیئر کر کے انٹرسیکشن چلی گئی, بی ایم ڈبلو نے نہیں کیا, اور جو ڈرائیور سائڈ تھی وہ ساؤتھ باؤنڈ جو ٹی ٹی سی کی بس تھی اس کے ساتھ وہ ٹکرائے. اس کے بعد جب تک پولیس پہنچی تو بی ایم ڈبلو کو آگ لگ چکی تھی, بہرحال جو اس میں بیٹھے ہوئے لوگ تھے ان کو باہر نکالا, لیکن ان کی حالت خراب تھی, ان کو رش کیا ٹراما سینٹر میں, وہ آگ واگ بجھا झाई है, और इसके अलावा जो टीटीसी की बस में जो ड्राइवर और चार पैसेंजर्स हैं उनको बिल्कुल माइनर इंजरीज आए हैं, तो दे आर ओके। और वो कहते हैं जी कि इस इलाके में अगर किसी को भी कुछ और पता है, किसी ने कोई तस्वीर खींची है, तो वो पुलिस के साथ कॉन्टेक्ट कर सकता है। यूनाइटेड नेशंस के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतरस जो है वो आज रिपोर्टर्स के साथ बात कर रहे थे जी ब्राजील के रियो डी जनेरो में, वही जो G20 की मीटिंग हो रही है उसी के अंदर, और उन्होंने कहा जी कि मिडिल ईस्ट के अंदर जो कंडीशन है वो बहुत ही ज्यादा खराब है। यूएन चार्टर और इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन लॉ, इंटरनेशनल लॉ जो है वो कहीं पे भी नजर नहीं आ रहा है। हम चाहते हैं कि टू स्टेट सोल्यूशन होना चाहिए जिसमें कि पैलेस्टीनियंस के लिए भी गारंटीज हों और दोनों पैलेस्टीनियंस और इजरायली पीसफुली और सिक्योरिटी में रहें। इसराइल ने बड़ा कंडेम किया। इसके अलावा एक जो दूसरी यूनाइटेड नेशंस की रिपोर्ट आई थी जिसमें कि उन्होंने कहा जी कि ये जो कुछ भी गाजा के अंदर कर रहे हैं इट इज कंसिस्टेंट विद द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ जीनोसाइड, उन्होंने कहा कि ये बिल्कुल झूठ है। लेकिन जो यूरोपियन यूनियन के आउटगोइंग टॉप डिप्लोमेट है जोसेफ बोरेल, उन्होंने कहा मेरे पास लफ्ज नहीं है जो कुछ जुल्म गाजा के अंदर हो रहा है, और मैं जो 5 साल यहां पे मीडिएट करने की कोशिश करता रहा हूं, मैं बिल्कुल जो है वो इस कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व ही नहीं, यानी कि जंग से पहले भी वो मीडिएट कर रहे थे कि किसी तरह ये कॉन्फ्लिक्ट जो है वो रिजॉल्व हो जाए, तो उसका जिक्र कर रहे थे। वो कहते हैं मैं नहीं कर सका। वो कहते हैं जी 44,000 के करीब लोग गाजा में मर चुके हैं, तमाम एरिया जो है वो डिस्ट्रॉय हो चुका है, 70% ऑफ लोग जो मरे हैं उनमें औरतें और बच्चे हैं, और ज्यादातर बच्चे जो मरे हैं उनकी जो तो उम्र जो है 9 साल से भी कम थी। इसके साथ साथ इसराइल जो है उसने जी स्ट्राइक्स अभी भी बेरूत लेबनान के ऊपर जारी रखी हुई हैं, और काफी सारे वहां पे भी बंदे मारे हैं। गाजा में भी आज बेशुमार बंदे फिर से इन्होंने मारे हैं, खान यूनस के ऊपर फिर से इन्होंने अटैक्स किए हैं। इसके अलावा इन्होंने हिजबुल्ला का एक स्पोक्स पर्सन जो है मोहम्मद अफीफ उसको भी अपनी स्ट्राइक्स में मारा है। पोप फ्रांसिस जो है उन्होंने भी आज कहा है, वो पोप फ्रांसिस ने भी फतवा देता है भाई अपना, उन्होंने भी अपना फतवा देता है। उन्होंने कहा है कि एक इन्वेस्टिगेशन बिठाओ, ये जो इसराइल ने जीनोसाइड कमिट किया है गाजा के अंदर उसके लिए फॉर द फर्स्ट टाइम उन्होंने ये बात कही है, और ये बात उन्होंने कही है एक जो जर्नलिस्ट है हर्नान रेज एलकेड, उसने एक किताब लिखी है जिसमें कि उसने ये इंटरव्यू लिया था पोप साहब का, उसके कुछ एक्सर्प्ट्स जो हैं इटालियन डेली ला स्टैम्पा के अंदर जो है वो छपे हैं। ये किताब जो है इसका नाम है होप नेवर डिसअपॉइंट्स द पिलग्रिम्स टुवर्ड्स द बेटर वर्ल्ड, ये है बुक का नाम, और इसके अंदर वो कहते हैं जी कि हम इसको कल ये जो ट्यूजडे का दिन है उसमें छाप रहे हैं, लेकिन उसके एक्सर्प्ट्स पहले ही आ गए हैं। पोप का जो 2025 में ईयर लॉन्ग जुबली मनाएंगे उससे अहेड ऑफ दैट इन्होंने ये इंटरव्यू लिया था, और उन्होंने कहा जी कि ये जो कुछ भी जुल्म हो रहा है यहां पर गाजा में ये बहुत ही डिप्लोरेबल है और इसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन बिठाना बनता है। क्रेमलिन जो है उसने जनाब यूएस के जो बाइडन का डिसीजन है कि जी उन्होंने इजाजत दे दी है कि अमेरिकन मिसाइल्स को रशिया की सॉइल के ऊपर यूज किया जा सकता है, उसके ऊपर बड़ा ही आज रिएक्शन दिया है। क्रेमलिन के जो स्पोक्स पर्सन है दिमित्री पेशकॉफ, उन्होंने कहा जी कि ये डिसीजन जो है ये और ज्यादा टेंशन को बढ़ाएगा। मीनवाइल G7 के लीडर्स जो है उन्होंने फिर से कहा जी कि यूक्रेन लड़ो मरो असी तुहाड़े नाल खलोते हैं, इसलिए क्योंकि प्रेसिडेंट ज़ेलेंस्की जो है उन्होंने कहा जी कि मैं चाहता हूं कि नेक्स्ट ईयर तक ये वॉर जो है खत्म हो जाए। भाईजान आपकी क्या औकात और हैसियत है, ये ट्रंप साहब ने कहा है कि मैं जैसे ही आऊंगा पहले मैं यूक्रेन की वॉर रोकूंगा, तो ये अपनी तरफ से ना बड़े वो हीरो बनने की कोशिश कर रहे हैं सर जी जो है, तो वो कहते हैं जी कि मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगा और पूरे डिप्लोमेटिक मीन्स लगाऊंगा कि वॉर रुक जाए। वाह वाह क्या बात है सर, इतने आप बंदे मरवा के हूं तुम करोगे कोशिश, रहन दे हूं ट्रंप साहब आ रहे हैं खुद ही ठीक कर लेंगे तुम। तो इसमें जो ट्रंप साहब हैं उन्होंने कहा था जी, और उनके जो वाइस प्रेसिडेंट इलेक्ट हैं जेडी वैंस उनकी और उनकी एडमिनिस्ट्रेशन जो है ट्रंप साहब की, उन्होंने यही कहा था कि हम बिल्कुल रशिया से बात करेंगे, और हम पुतिन साहब चूंकि बड़े क्लोज हैं ट्रंप साहब के तो हम इस जो है वो लड़ाई को रोकेंगे। ज़ेलेंस्की साहब से रिपोर्टर्स ने पूछा कि जी हमने प्रोबेबली सुना है कि शायद ट्रंप साहब हो सकता है कि ऐसा करें कि यूक्रेन की जो लैंड सीज की है रशिया ने वो उसके पास रहने दें और फिर कहें कि भई आप सीज फायर कर लो। ज़ेलेंस्की साहब ने कहा कि हमने इस तरह की कोई बात ट्रंप साहब से नहीं सुनी और जो है इसलिए मुझे कुछ इसके बारे में पता नहीं है। चाइनीज प्रेसिडेंट शी जिनपिंग जो है जी उनकी मीटिंग आज एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कोऑपरेशन समिट जो कि लीमा पेरू में हो रही है उसमें इनकी मुलाकातें हुई हैं, और उसके बाद उन्होंने कहा जी कि बेशक ट्रंप साहब आ जाएंगे तो हमें लगता है कि हम उनके साथ जो है वी विल कीप द सेम कम्युनिकेशन एंड एक्सपैंड कोऑपरेशन एंड मैनेज डिफरेंसेस। लेकिन आज बाइडन साहब के साथ बातचीत में उन्होंने कहा है जी कि आप अगर चाहते हैं कि एक स्टेबल हेल्दी और सस्टेनेबल चाइना यूएस रिलेशनशिप चलता रहे तो इसके अंदर हमको राइवल बन के नहीं रहना है, कॉम्पिटिशन नहीं करना है और एक दूसरे को हर्ट नहीं करना है, तो अगर हम इस तरह मिलकर काम करेंगे तो दुनिया के लिए भी अच्छा रहेगा और ट्रंप साहब के साथ काम करने के लिए हम बिल्कुल तैयार हैं। फिलीपींस और यूएस जो है उसके बीच में जनाब, उनके बीच में भी एक मिलिट्री इंटेलिजेंस शेयरिंग डील जो है वो हुई है ताकि चाइना को काउंटर किया जा सके। आज सेक्रेटरी डिफेंस जो है फिलीपींस के गिल्बर्टो टियोडोरो, उनकी मुलाकातें वो कर रहे थे विजिटिंग यूएस काउंटर पार्ट लॉयड ऑस्टिन के साथ, और ये अग्रीमेंट जो उन्होंने साइन किया है डिपार्टमेंट ऑफ नेशनल डिफेंस इन मनीला, इसका नाम है जनरल सिक्योरिटी ऑफ मिलिटरी इंफॉर्मेशन अग्रीमेंट। ऑस्टिन साहब का ये चौथा और लगता है कि बिल्कुल फाइनल ये दौरा है, क्योंकि जाहिर है उसके बाद ट्रंप साहब की गवर्नमेंट आ जाएगी। एक्स के ऊपर ऑस्टिन साहब ने लिखा कि हम दोनों जो है कमिटेड हैं टू डीपन अलायंस स्ट्रेंथन रीजनल सिक्योरिटी बिकॉज वी शेयर द सेम वैल्यूज। ये किसी जमाने में आप पाकिस्तान के लिए भी कहते थे, तो ये शेयर्ड वैल्यूज वाली बात तो आप हर जगह पे ये जुमला चिपकाते हैं। तो बहरहाल एनीवेज इन्होंने फिलीपींस में भी ऐसा ही कहा है। अच्छा जनाब, श्रीलंका के अंदर बहुत बड़ी चेंज आई है फिर से बड़े अरसे के बाद, कोई तकरीबन 24 इयर्स के बाद। श्रीलंका की जो मार्क्सिस्ट लीनिंग प्रेसिडेंट हैं अनुरा कुमारा डिसायंके, उन्होंने रीअपॉइंट किया है हरिनी अमारा सूर्या को एज प्राइम मिनिस्टर। सो अ फीमेल प्राइम मिनिस्टर हैज रिटर्न इन श्रीलंका आफ्टर 24 इयर्स, इन्होंने इनको पिक किया है। इसके साथ साथ एक 21 मेंबर कैबिनेट जो है उसका भी अनाउंसमेंट किया है। इन्होंने कहा जी कि मैं बिल्कुल मुल्क के अंदर जो बड़ा कैश ट्रैप्ड है श्रीलंका, उसमें स्वीपिंग रिफॉर्म्स लेकर आऊंगा, न्यू कॉन्स्टिट्यूशन लाऊंगा, और जो करप्शन है उसको मैं जो है वो फाइट करूंगा। ये स्वेरिंग सेरेमनी जो थी न्यू कैबिनेट की, इसका लाइव टेलीकास्ट किया गया था फ्रॉम प्रेसिडेंशियल सेक्रेटेरिएट इन कोलंबो। और ये जो है ये प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट की गई थी सितंबर में टू सर्व इन द इंटरिम गवर्नमेंट, और अब इनको फिर से जो है रीअपॉइंट किया गया है। 13 बांग्लादेशी फॉर्मर टॉप गवर्नमेंट ऑफिशियल्स जो हैं जी, उनको अरेस्ट किया गया है आफ्टर मैस अपराइजिंग इन अगस्त, जिसके के अंदर उनको चार्ज किया गया है फॉर मैसेकर्स बाय स्पेशल ट्रिब्यूनल हु टोल्ड द इन्वेस्टिगेटर्स कि हमारा काम जो है वो हो गया है, अब आपके पास एक महीना है कि आप पूरा काम करें और फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर शेख हसीना को भी मुल्क में वापस लेकर आए ताकि इन सबको सजाएं दी जा सके। ये जो अनरेस्ट हुआ था बांग्लादेश में उसमें कोई 1000 के करीब लोगों की डेथ हुई थी। प्रोसिक्यूटर मोहम्मद तजुल इस्लाम जो है उन्होंने कहा जी जो 13 लोग हैं इनमें से 11 फॉर्मर मिनिस्टर्स हैं, एक जज है, एक फॉर्मर गवर्नमेंट सेक्रेटरी है, और ये जो स्टूडेंट्स के अगेंस्ट उन्होंने क्रैक डाउन किया था उसके लिए इनको एक्यूज किया गया। चीफ प्रोसिक्यूटर ऑफ बांग्लादेश इंटरनेशनल क्राइम्स ट्रिब्यूनल जो है उन्होंने रिपोर्टर्स से बात की कि ये लोग जो थे ये इन्होंने हिस्सा लिया था शेख हसीना के साथ इन प्लानिंग इंसाइटिंग वायलेंस ऑर्डरिंग लॉ एनफोर्समेंट ऑफिसर्स टू शूट एट साइट, और ये जो है ये जो जीनोसाइड हो रहा था इसको रोकने से ये बिल्कुल भी जो है वो पीछे हट गए थे। तो इसकी वजह से हजारों बच्चे जो हैं स्टूडेंट्स उनकी डेथ हुई थी और बाकी भी कुछ लोगों की। ये जनाब बहुत ही हैरत अंगेज बात है, और इस बात को अगर आज आप ट्विटर पे देखेंगे तो काफी आपको नजर आएगी क्योंकि ये इंतहाई खतरनाक बात है। अमरुल्ला साले जो कि जिन्होंने सर्व किया था फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट ऑफ अफगानिस्तान अंडर प्रेसिडेंट अशरफ गनी, उन्होंने जनाब आज आमिर साहब बड़ी जबरदस्त खबर दी है। उन्होंने कहा हमारे पास 3 अमेरिकन हॉस्टेजेस हैं, और अगर अमेरिका को चाहिए तो जो ट्रंप की नई गवर्नमेंट आएगी उसको हम कहेंगे कि हम आपके ये बंदे छोड़ेंगे लेकिन हमारी भी कुछ बातें हैं जिनको आपको मानना पड़ेगा। उन्होंने कहा जी कि हम अमेरिका के साथ स्वीट रिलेशनशिप स्टार्ट करना चाहते हैं ट्रंप साहब के साथ। ये जो 3 लोग हैं हमारे पास, इसमें से 2 जो हैं एंग्लो सैक्सन अमेरिकन हैं, एक अफगान अमेरिकन है महमूद शाह हबीबी, जिसने बड़ा रोल प्ले किया था अल जुएरी को लोकेट करने में और अमरीका को इसकी जो इन्फॉर्मेशन देने के लिए। उन्होंने CIA को रिक्वेस्ट किया है कि आप हमारी कोलेबरेशन जो है ट्रंप साहब के साथ बढ़ाएं, और इसके अलावा भी वो कहते हैं वी हैव स्टिल फ्यू कार्ड्स टू प्ले विद ट्रंप। मतलब देखो यार किसको ललकार रहा है आपने भाईजन, व्हाट इज दिस, ट्रंप साहब को आप ललकार रहे हो हैं ऐसे। अच्छा जनाब, पाकिस्तान की तो जो सबसे बड़ी खबर आपको नजर आ रही होगी VPN के अलावा, नवाज शरीफ साहब के जो बेटे हैं हसन, उनको डिक्लेयर किया गया है आज बैंकरप्ट बाय हाई कोर्ट ऑफ जस्टिस इन लंदन बिकॉज ही फेल्ड टू क्लियर टैक्स लायबिलिटीज ही ओड टू द UK गवर्नमेंट। डिटेल्स जो हैं वो UK गैजेट के अंदर छपी हैं, जिसमें कि पब्लिक रिकॉर्ड फॉर इंसॉल्वेंसी केसेस जो हैं उनकी डिटेल्स आती हैं। हसन साहब जो हैं उसके बारे में कहा गया कि ही रिजाइड्स एट फ्लैट 17 एवनफील्ड हाउस 118 पार्क लेन और ये सर्व करते हैं एस्को डायरेक्टर. इनको डिक्लेयर किया गया है बैंकक्रप्ट अंडर केस नंबर 694 ऑफ 2023. पिटीशन जो थी वो अगस्त 25, 2023 में फाइल की गई थी और बैंकक्रप्सी का ऑर्डर इशू किया था अप्रैल 29, 2024 में. और ये केस फिर उसके सामने जो है लाया गया था हर मैजिस्ट्रीज रेवेन्यू एंड कस्टम्स ऑफिशियल्स, जिसके के बाद ये फैसला किया गया है. लेकिन अभी भी ये बहुत सारी जो यूके बेस्ड कंपनीज हैं उसके डायरेक्टर हैं, लेकिन इस फैसले के बाद अब ये उनके डायरेक्टर नहीं रह सकेंगे. पाकिस्तान टेलीकॉम अथॉरिटी यानी पीटीए के जो चेयरमैन हैं मेजर जनरल रिटायर हफीजुर रहमान साहब, उन्होंने कहा है जी कि आम लोग जो हैं उनको बहुत ज्यादा तकलीफ हो रही है वीपीएन के बंद होने से. आज वो एक ब्रीफिंग दे रहे थे सेनेट की स्टैंडिंग कमेटी ऑन आईटी एंड टेलीकॉम पे, और उन्होंने कहा जी कि हर किसी को मैं कहता हूं कि आप अपने वीपीएन को रजिस्टर करें नवंबर 30 तक, क्योंकि हमने डेडलाइन अब एक्सटेंड कर दी है. और जितने भी अनऑथराइज वीपीएन हैं जो कि बायपास करते हैं इंटरनेट रिस्ट्रिक्शंस को, उनके लिए हमारे बड़े कंसर्न हैं क्योंकि हम प्रोहिबिट करना चाहते हैं कुछ खास किस्म का कंटेंट. उन्होंने कहा जी कि हां ठीक है, लेकिन मैं ये मानता कि जो आईटी के बिजनेस के साथ रिलेटेड है उनके लिए ये बड़ी इनकन्वीनियंस है, तो अगर आप इनकन्वीनियंस से बचना चाहते हैं तो आप अपने जो है ये इनको रजिस्टर हमारे साथ करें. उन्होंने कहा जी कि 25,000 वीपीएन जो है रजिस्टर अभी तक हमारे साथ हो चुके हैं. इसके अलावा पीटीए ने जो है ब्लॉक किए हैं 0.5 मिलियन ऑब्सीन वेबसाइट्स. वाह वाह वाह, क्या बात है जी, क्या बात है, बड़े तीर मार रहे हैं हम. यानी कि पूरे का पूरा जोर जो है आपका उल्टी तरफ लगा हुआ है, कोई कंस्ट्रक्टिव काम ना करना आप, ठीक है. केपी के जो चीफ मिनिस्टर हैं अली अमीन गंडापुर साहब, उन्होंने कहा है जी कि हम जो नवंबर 24 का प्रोटेस्ट मार्च कर रहे हैं और ये जो ऑन गोइंग एस्टैब्लिशमेंट और जो के साथ जो हमारे टेंशन्स हैं, इमरान खान साहब के साथ हम डिस्कस करके इन चीजों को आगे लेके चलेंगे. आज जो एपेक्स कमेटी की मीटिंग हो रही है उसके अंदर वो अब फेस टू फेस बैठेंगे टॉप मिलिट्री ब्रास के साथ. इस मीटिंग को चेयर करेंगे प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब और इसके अंदर बैठे होंगे आर्मी के चीफ, डीजीआईएसआई, डीजीएमआई, डीजीआईबी, तमाम प्रोविंशियल चीफ मिनिस्टर्स जो हैं, की फेडरल मिनिस्टर्स जो हैं, लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन इस पे जो है वो डिस्कस करेंगे. उन्होंने मीडिया को बताया कि वो इससे पहले भी बहुत सारी मीटिंग्स जो है अटेंड कर चुके हैं इस तरह की एपेक्स मीटिंग्स और हमेशा अपनी पार्टी के कंसर्न्स रेज किए हैं. उन्होंने अब भी करेंगे जो कि इमरान खान साहब कह रहे हैं कि भई हमारे कैदियों को छोड़ो और कॉन्स्टिट्यूशन ये जो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट लाए हैं इसको आप खत्म करें और जो ये जो हमारा मैंडेट आपने चोरी किया उसको वापस करें. पीटीआई का मार्च जो इस्लामाबाद में होने वाला है नवंबर 24 को, वो बगैर आर्म्स के होएगा, पीसफुल होएगा, लेकिन अगर हमारी बातें ना मानी गई तो वो धरने के अंदर यानी सिट इन के अंदर भी तब्दील हो सकता है. पार्टी लीडर वहीद इकबाल ने कहा, उन्होंने कहा जी कि हम बिल्कुल, हमारे बारे में ये कहा जाता है कि हम बंदूकें या असला लेकर आते हैं, हमारे पास कुछ भी नहीं होगा. इसके बीच में फेडरल गवर्नमेंट ने बड़ा वार्न किया कि आपको बड़ा हार्शली आपके साथ डील किया जाएगा, ये जो आपका डू एंड डाई वाला जो आपका प्रोटेस्ट है इसके लिए. प्राइम मिनिस्टर्स एडवाइजर जो है राणा सनाउल्ला, उन्होंने कहा जी कि हम आपके ऊपर क्रैकडाउन करेंगे अगर आपने वायलेट किया कोई भी जो है वो क्लॉज पीस को खराब करने के लिए. पीपीपी की शाजिया मरी जो है उन्होंने भी बड़ा इसको कंडेम किया. उन्होंने कहा कि पीटीआई सिर्फ केओस मुल्क में लेके आना चाहता है. वहीद इकबाल ने कहा कि हम कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो हर सिटीजन को पीसफुल जो प्रोटेस्ट है करने की इजाजत देता है विदाउट आर्म्स ऑफकोर्स, तो इसलिए ये हमारा हक है और हम करेंगे. डिफेंस मिनिस्टर ख्वाजा आसिफ ने बोला कि हमारे दरवाजे अभी भी निगोसिएशन के लिए बंद नहीं हुए हैं. पीटीआई के सेक्रेटरी इन्फॉर्मेशन शेख वकास अक्रम ने कहा कि हम किसी किस्म की कोई टॉक्स गवर्नमेंट या एस्टेब्लिशमेंट के साथ अभी नहीं करेंगे. आईएमएफ का मिशन आपको पता ही, हमने बताया था वीकेंड पे कि अचानक आ गया था लेड बाय नेथन पोर्टर टू विजिट पाकिस्तान, जिसके ऊपर बड़ी बातें आई थी कि शायद पाकिस्तान के ऊपर और सख्ती की जाएगी, लेकिन फाइनेंस मिनिस्टर मोहम्मद औरंगजेब ने कहा कि ऐसा कुछ भी नहीं है. आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बात कर रहे थे इस्लामाबाद में और उन्होंने कहा जी कि गवर्नमेंट बिल्कुल डिटर्मिंड है सारे स्टेप्स लेने के लिए कि रेवेन्यू ज्यादा से ज्यादा कलेक्ट किया जाए, लेकिन मैं हर सेक्टर को बोलता हूं कि भई हम तो एनफोर्स करेंगे टैक्सेशन और कंप्लाई भी करेंगे, लेकिन आप लोग भी अपना रोल प्ले करें और हर आदमी अपना टैक्स दे और ताकि जो है हमारा आईएमएफ का जो टारगेट्स है वो पूरे किए जा सकते हैं. अर्लियर जो है आईएमएफ ने पाकिस्तान को कहा था कि आप अपना टैक्स बेस ब्रॉडन करें और ये जो अनटैप्ड रेवेन्यू सोर्सेज हैं इसको आप टैप करें. मिनिस्टर ने कहा कि आईएमएफ पाकिस्तान जो है वो कॉन्स्टेंटली एंगेज्ड हैं इन डायलॉग एज म्यूचुअल क्रेडिबिलिटी ट्रस्ट डन बाय बायलैटरल टॉक्स. ठीक है जी, पायन दबा दब पहल लेने जाओ. ठीक है, बड़ी अच्छी गल है। सुप्रीम कोर्ट का 7 मेंबर कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच जो है उसने जनाब आज काफी पेंडिंग केसेस सुने, लेड बाय जस्टिस अमीनुद्दीन खान। ये जो बेंच है इसके अंदर हैं जस्टिसेस आयशा मलिक, मोहम्मद अली मजाहिर, हसन रिजवी, जमाल मंदोखेल, नईम अख्तर अफगान और मुसरत हिलाली। इसके अंदर जो कैंडिडेट्स जिनको सिर्फ 50% वोट मिला था और उनको सक्सेसफुल बोला था, कोर्ट ने इसको डिसमिस किया इस प्ली को। उन्होंने कहा जी जो सिर्फ 50% वोट लेता है वो सक्सेसफुल कैसे हो सकता है। इसके अलावा जो एडवोकेट चौधरी अकरम जो ये प्ली लेकर आए थे अपने कैंडिडेट्स के बिहाफ पे, क्लाइंट्स के बिहाफ पे, उनको फाइन किया आज उन्होंने 20,000 का, और उन्होंने कहा कि ये इंतहाई चीप और फ्रिवलस किस्म की पिटीशन थी जिससे कि कोर्ट का टाइम जाया हुआ है। जस्टिस मुजाहिर ने क्वेश्चन किया कि कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस जो हैं वो क्या करती हैं, कहती हैं कि जिस बंदे को 50% वोट मिलेगा वो विन कर सकता है, कोई वोट का जो आउटकम है वोटर जितने कास्ट करेंगे वोट उसके ऊपर होता है। जस्टिस आयशा ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट जो है उसके पास कोई अथॉरिटी नहीं है कि वो न्यू लॉज को लेजिस्लेट करे। पिटीशनर जो थे उन्होंने कहा कि जी पार्लियामेंट डिसाइड करती है कि लोग अपनी जिंदगी कैसे गुजारें। वाह वाह वाह। जस्टिस खान ने कहा कि पार्लियामेंट के पास ऐसा कोई हक नहीं है कि वो लोगों को बताएं कि वो अपनी जिंदगियां कैसे गुजारेंगे। जस्टिस हिलाली जो है उन्होंने कहा जी कि वोटर्स जब घर पे बैठ के टीवी पे देखते रहते हैं और वोटिंग करने नहीं जाते हैं और फिर जो सही बंदा नहीं आता है तो ये उनकी शॉर्टकमिंग्स हैं। तो आज काफी गर्मा गर्म जनाब सेशन रहे। हिंदुस्तान में भी आज काफी जनाब गर्मा गर्मी रही। जो शिरोमणी अकाली दल के जो चीफ हैं सुखबीर बादल साहब जो प्रेसिडेंट हैं उन्होंने आज रिजाइन कर दिया है और उन्होंने कहा जी कि नए इलेक्शंस करवाओ और नया बंदा ढूंढो। डॉक्टर दिलजीत सिंह चीमा जो कि पार्टी के सेक्रेटरी जनरल हैं उन्होंने एक्स के ऊपर कहा कि यस अभी इन्होंने रेजिग्नेशन दिया है लेकिन पार्टी की एक इमरजेंसी मीटिंग हो रही है और उसमें वो कंसिडर करेंगे इनका रेजिग्नेशन। अकॉर्डिंग टू सोर्सेज पार्टी जो है वो बिल्कुल बादल के पीछे खड़ी हुई है और लेकिन वो कहते हैं जी कि ये अच्छा इनका मूव है क्योंकि बहुत सारे जो एतराज आ गए थे सुखबीर बादल पे वो अब जो हैं वो चले जाएंगे क्योंकि इनको वो कहते हैं जी कि जो पनिशमेंट इनको दी गई थी अकाल तख्त की तरफ से वो इन्होंने कंप्लीट कर ली है। और अगस्त 30th को इनको डिक्लेयर किया गया था तनखाइया जो होता है वो पंजाबी में उसका मतलब है सिनर, जिसने के गुनाह कोई किया होता है जो कि रिलीजियस मिसकंडक्ट का गिल्टी होता है। तो अकाल तख्त जो है जिसने कि इसको फाइंड किया था कि अपनी जो इन्वेस्टिगेशन में कि इन्होंने सिख कम्युनिटी के इमेज को, उनके इंटरेस्ट को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाया और इसके अलावा शिरोमणी अकाली दल को भी नुकसान पहुंचाया है। तो बहरहाल वो कहते हैं जी चूंकि इन्होंने अपनी सजा पूरी कर लिया तो हो सकता है ये फिर वापस आए लेकिन अभी जो इन्होंने रेजिग्नेशन दिया उसके ऊपर हम गौर करेंगे। मणिपुर के अंदर जनाब हिंदुस्तान में बिल्कुल चीजें संभल नहीं रही हैं। मणिपुर की गवर्नमेंट ने आज भी अनाउंस किया कि तमाम स्कूल और कॉलेजेस इम्फाल वेस्ट और ईस्ट के अंदर शट डाउन रहेंगे और एक कर्फ्यू यहां पर फिर से लगा दिया गया है। ये जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट है इसके अंदर वायलेंस जो आपको पता है ये पिछले साल मई से शुरू हुई हुई है और ये एथनिक वायलेंस है जो कि कई महीनों से अब चलती ही चली जा रही है बल्कि 1.5 साल होने को आ गया। तो यहां पे कर्फ्यू उस वक्त लगाया गया कि अभी जब कुछ दिन पहले भी 6 डेड बॉडीज जो थी पुलिस को मिली थी। गवर्नमेंट जो है इसके अलावा उसने इंटरनेट सर्विसेज भी इधर सस्पेंड कर दी हैं बिल्कुल। इसके अलावा सेंट्रल गवर्नमेंट जो है उसने एडिशनल 50 CAPF की जो कंपनीज हैं वो भेजी हैं। हर कंपनी के अंदर 5,000 जो पर्सनल हैं सिक्योरिटी पर्सनल वो होते हैं और ये लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन आप खुद सोच सकते हैं कि ये कितनी खराब हो गई है। यानी कि 50 × 5,000 आप कर लेंगे कितना बन गया। ये आमिर साहब तुम्हारी मैथ्स अच्छी है, 5 लाख के करीब बंदा पुलिस वाला जो है एडिशनल यहां पर आ गया। अनमोल बिश्नोई जो कि फ्यूजिटिव है और ये गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई का भाई है, इसको जनाब अलेजली आज अनाउंसमेंट की गई है अमेरिका की तरफ से शायद कि इसको कैलिफोर्निया में डिटेन किया है इस और लेकिन कोई भी ऑफिशियल कम्युनिकेशन जो है वो इंडियन अथॉरिटीज के साथ शेयर नहीं की गई। और लेकिन ये खबरें सामने आई हैं कि इसको जो है पकड़ा है क्योंकि ये 3 बड़े हाई प्रोफाइल केसेस, किलिंग ऑफ सिद्धू मूसेवाला और फायरिंग आउटसाइड सलमान खान हाउस एंड किलिंग ऑफ बाबा सिद्दीक जो एमपीए थे उनके में जो है ये इन्वॉल्व है। ये अपने भाई लॉरेंस बिश्नोई का प्रॉक्सी है और ये चलाता है बिश्नोई ब्रार गोडारा क्राइम सिंडिकेट और ये वांटेड लिस्ट के ऊपर है इंडिया की। तो अब पता नहीं है कि ये अनमोल बिश्नोई को एक्स्ट्राडाइट इंडिया में किया जाएगा। गोविंदा जो हैं वो जलगांव के अंदर कैंपेन कर रहे थे जब इन्होंने ही कट हिज कैंपेन शॉर्ट. उसकी वजह यह है कि इनके हेल्थ के काफी मसले अब सामने आ गए हैं. गोविंदा जो थे वो महायुति कैंडिडेट्स के साथ नवंबर 20th के इलेक्शन से पहले जो हैं वो इलेक्शन ट्रेल के ऊपर थे और मुंबई जब पहुंचे तो बहुत ज्यादा बीमार हो गए थे और इन्होंने लेकिन फिर भी लोगों को कहा है कि जी मोदी जी को आप वोट दो, गोविंदा ने कहा है. और उन्होंने उसके अलावा कहा है कि आप जो ये जो रूलिंग अलायंस है बीजेपी शिवसेना और एनसीपी उसको आप ज्यादा फेवर दें. ये फॉर्मर कांग्रेस के लोकसभा एमपी हैं लेकिन इन्होंने ज्वाइन किया था एकांत शिंदे लेड शिवसेना को और इनको हॉस्पिटल में आपको पता है हमने पूरी खबर गोविंदा की सुनाई थी कि इनको हॉस्पिटल में दाखिल किया गया था क्योंकि अपनी बंदूक साफ कर रहे थे और कह रहे थे कि एक्सीडेंटली उससे गोली चल गई थी जो इनकी टांग में लग गई थी और फिर उसमें इनकी सर्जरी हुई थी तो उसकी वजह से शायद इनकी सेहत अभी भी ठीक नहीं है. राकेश रोशन की मूवी के बारे में हमने आपको बताया था, करुण अर्जुन मेरे करुण अर्जुन आएंगे आ रहे हैं नवंबर 22 को है जी यहां पे ये लगने वाले हैं सिनेमाज में. लेकिन इसके से रिलेटेड बड़ी इंटरेस्टिंग बातें आज राकेश रोशन साहब ने की. राकेश रोशन साहब ने कहा जी कि जो पहली चॉइस थी इस फिल्म के लिए वो शाहरुख खान के साथ अजय देवगन था, सलमान खान नहीं था. तो मगर हुआ क्या कि क्योंकि वो कहते हैं जी अजय देवगन को मैं जानता था बचपन से, उसका जो फादर है वीरू देवगन एक्शन जो डायरेक्टर उसको भी मैं जानता था लेकिन शाहरुख खान और अजय देवगन दोनों मेरे पास आए और उन्होंने कहा जी कि शाहरुख खान रोमांटिक हीरो मशहूर है और अजय देवगन एक्शन हीरो लेकिन इस दफा इस फिल्म में हम उल्टे रोल करना चाहते हैं, अजय जो है रोमांटिक करेगा और शाहरुख खान एक्शन हीरो करेगा. तो मैंने कहा जी नहीं है तो फिल्म का मेरा स्टाइल ही नहीं है, ऐसे नहीं होगा लेकिन मैं ऐसे करता हूं तुम दोनों को थोड़ा थोड़ा एक्शन थोड़ा थोड़ा रोमांस देता हूं. बाला जी जिस वक्त ये पीछे हट गए तो ये कहते हैं जी कि मैं फिर सलमान खान और आमिर खान से मैंने बात की और जो दोनों जो थे ये राजकुमार संतोषी की 1994 कॉमेडी फिल्म कर रहे थे आपको पता ही है जबरदस्त अगेन ब्लॉकबस्टर अंदाज अपना अपना. लेकिन फिर वो कहते हैं जी शाहरुख खान मेरे पास वापस आए, उन्होंने कहा जी कि नहीं सर सॉरी मैं आपको पीठ नहीं दिखा सकता क्योंकि आपने मुझे ब्रेक दिया था, मैं आपके साथ काम करूंगा. तो फिर कहते हैं जी मैंने आमिर को कहा कि जी शाहरुख इज बैक और फिर जो सलमान था हमने फिर उसको रोप इन भी किया. बाबर आजम 30 इयर्स ओल्ड हमारे लेजेंड है जी, ही हैज सरपास्ड कोहली एंड ही हैज बिकम द सेकेंड हाइएस्ट लीडिंग रन स्कोरर ऑफ ऑल टाइम्स इन मेन T20. इन्होंने जो 41 रन्स अभी बनाए थे पाकिस्तान की थर्ड एंड फाइनल T20 सीरीज जो हो रही थी ऑस्ट्रेलिया के साथ उसमें एट बेलरेव ओवल के अंदर वहां पे, तो अब बाबर के पास हैं 4,192 रन्स इन T20, फोर मोर देन कोहलीज 4,188. रोहित शर्मा अलबत्ता नंबर वन पे ही हैं 4,231 रन्स के साथ और अब बाबर आजम को 40 मोर रन्स चाहिए टू बिकम द ऑल टाइम लीडिंग रन गेटर बाय रिप्लेसिंग शर्मा. इसके साथ साथ मोहम्मद रिजवान सिर्फ बाबर आजम के साथ दूसरे पाकिस्तानी हैं जो कि टॉप 10 T20 बैटर्स की लिस्ट में हैं. और जनाब रोते हैं चम चम नैन उजड़ गया चेन रे, हमने बड़ी खुशियां मनाई थी ना कि टेस्ट सीरीज पाकिस्तान ने हराई है, T20 सीरीज भी पाकिस्तान हार गया है ऑस्ट्रेलिया से, चलो बड़े वाले मैचेस जीत लिए छोटे हार गए हैं. अच्छा जी तो बस हमारी जो अनप्रेडिक्टेबल टीम है माशाल्लाह, ऑस्ट्रेलिया ने डिफीट किया जी पाकिस्तान को आज के मैच में भी एंड एज अ रिजल्ट दे हैव क्लिंच्ड द T20 सीरीज 3-0 और ये जो थर्ड और फाइनल जो था ये जो हो रहा था बेलरेव ओवल के अंदर उसमें और ये पाकिस्तान ने इनको टारगेट दिया था 117 का, 118 रन चेज करते हुए इन्होंने सिर्फ 3 विकेट्स लूज की और 52 बॉल्स टू स्पेयर और इन्होंने अपना टारगेट अचीव किया. पीसीबी के चेयरमैन मोहसिन नकवी साहब ने एक दफा फिर से कहा है कि जनाब जो चैंपियंस ट्रॉफी 2025 है वो पाकिस्तान के अंदर होगी, हालांकि इंडिया ने ना कर दिया है. पाकिस्तान का जो लास्ट एडिशन था इसका चैंपियंस ट्रॉफी का वो खेले थे और जीते थे इंग्लैंड के अंदर 2017 में और इंडिया ने पाकिस्तान को लास्ट दफा जो विजिट किया था वो 2008 में किया था. मीडिया से आज बात कर रहे थे लाहौर के कदाफी स्टेडियम में और उन्होंने कहा जी कि हम बिल्कुल गॉड विलिंग अपना अचीवमेंट जो अपना टारगेट अचीव करेंगे और जबरदस्त किस्म की चैंपियंस ट्रॉफी कराएंगे. हमने एक लेटर आईसीसी को लिखा है और हमने आईसीसी के साथ हम इन टच में और हम आईसीसी से पूछ रहे हैं कि तुम हमको इसका जवाब दो और ये जो स्पोर्ट्स है इसके अंदर पॉलिटिक्स नहीं आनी चाहिए, किसी भी कंट्री को स्पोर्ट्स और पॉलिटिक्स को मिस नहीं करना चाहिए लेकिन ये अब आईसीसी की क्रेडिबिलिटी के ऊपर बात आती है अगर वो जो क्रिकेट टीम्स हैं उनको ये नहीं बता सकती है कि भाई इन चीजों को मिक्स ना किया जाए. और उन्होंने कहा जी कि अगर तमाम और टीमें जो हैं पाकिस्तान में आने को तैयार हैं और उनको कोई इश्यू नहीं है तो हिंदुस्तान का क्या कंसर्न है, वो हमको उसको बताना चाहिए. और उन्होंने कहा जी कि अगर उनके कोई कंसर्न्स हैं इंडिया के तो वो हमसे बात कर लें, हम उनके वो कंसर्न्स जो हैं वो दूर कर लेंगे, और ऐसा कोई रीजन नहीं है उनके पास कि वो ना आए, तो हम अपने स्टांस के पास साथ स्टिक करेंगे कि हम पाकिस्तान में तमाम मैचेस कराना चाहते हैं। पीसीबी ने आज अनाउंस किया है कि वो आकिब जावेद को मेन सिलेक्शन कमेटी के जो मेंबर हैं उसको इंटरिम व्हाइट बॉल हेड कोच बनाएंगे। मीडिया के अंदर बहुत सारे खबरें आ रहे थे कि जैसे ये रिप्लेस करेंगे जेसन गिल्सबी को एज हेड कोच फॉर ऑल फॉर्मेट्स। पीसीबी ने इस मीडिया रिपोर्ट को रिफ्यूट किया है, जो उन्होंने कहा जी कि जावेद जो है ही विल सर्व एज सीनियर मेंबर ऑफ सिलेक्शन कमेटी और उनको एडिशनल रिस्पॉन्सिबिलिटीज अभी दी जा रही हैं चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के तक के लिए, जो कि शुरू हो रहा है पाकिस्तान में फरवरी 19 से मार्च 2025 में, और उन्होंने कहा जी कि उसके बाद फिर हम जो है रिक्रूटमेंट प्रोसेस शुरू करेंगे फॉर अ परमानेंट व्हाइट बॉल हेड कोच। एंड जनाब एब्सोल्यूटली अवर लास्ट न्यूज अगेन इज अबाउट पीसीबी। पीसीबी ने आज सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट जो हैं उसकी लिस्ट आज की है, शाया की है फॉर 16 विमेन क्रिकेटर्स फॉर 2024-25 इंटरनेशनल सीजन इफेक्टिव फ्रॉम जुलाई 1, 2024। उन्होंने कहा जी कि एनुअली इनकी जो है वो परफॉर्मेंस को रिव्यू किया जाएगा और फिर ये सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट जो है इनको अपडेट किया जाएगा। उन्होंने लास्ट ईयर कहा कि जी हमने 20 प्लेयर्स जो थे उनको 2 ईयर कॉन्ट्रैक्ट दिया था, तो इसके अंदर अब चेंजेस जो है वो ये आई है कि कैप्टन फातिमा सना और विकेट कीपर बैटर मुनीबा अली को प्रमोट किया गया कैटेगरी ए में, लेफ्ट आर्म स्पिनर सादिया इकबाल को कैटेगरी बी में, गुल फिरोजा रामीन शमीम तस्मीन रुबाब जो हैं ये न्यू एंट्रेंस हैं टीम के अंदर, बाकी के जो प्लेयर्स हैं उनका कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू नहीं किया गया है क्योंकि उनकी परफॉर्मेंस रिव्यू की थी और वो इतनी अच्छी नहीं रही, और उन्होंने कहा जी कि लेकिन फिर भी वो पूल के अंदर रहेंगी एंड दे'ल बी एलिजिबल फॉर सिलेक्शन अगर कोई रेगुलर्स में से इंजर हो जाता है। पीसीबी ने कहा कि हम नेक्स्ट जनरेशन ऑफ फीमेल क्रिकेटर्स जो हैं उनको नर्चर करना चाहते हैं ताकि इनको ग्रूमिंग की जा सके इनकी फॉर आईसीसी वेमेन्स फ्यूचर्स टूअर्स प्रोग्राम 2025-29 के लिए, और उन्होंने कहा जी कि हम विमेन जो क्रिकेट है उसको अब हम बढ़ावा देंगे। ठीक है जी, और ये जो पार्ट था ये दिस वाज स्पॉन्सर्ड बाय ओपन माइक कफे। आपको पता है ये ओपन माइक कफे में नासिर शाह साहब होते हैं, कहते हैं जबरदस्त में खाने जो है वो आपको खिलाता हूं, जाओ उनके पास मजे मजे के खाने खाओ। इसके अलावा जनाब मोमिन हलाल जो है मीट उसके पास जाएं, बहुत सारे हलाल खाने हैं, हर चीज आपने हलाल करनी है, कोई चीज इधर उधर की नहीं करनी। ठीक है जी, वसीम भाई को कॉल कर लें, वहां पे आपको बहुत ही डिस्काउंटेड रेट्स में मीट चिकन सब कुछ मिलेगा।
बिल्कुल जी, ये थी हमारी रंगारंग खबरें।
हाँ,
आई होप कि आप लोगों को खबरें पसंद आई होंगी। अब जो है वो बस खबरों का इख्तिताम हो गया है तो अब जाने की इजाजत ले लेते हैं।
मर लें अब,
आप मर लें, नहीं हम तो आपकी जिंदगी की दुआ करते हैं।
नहीं यानी कि हम मिकाले मरोने पे मर बैठे हैं, वो हम कह रहे हैं मर रहे हैं उन पे, तो वो हमें याद आ गए हैं फिर से आज।
अब कौन किस पे मर रहा है ये अल्लाह ही जानता है जनाब, हमारा इस पे कोई लेन देन नहीं है।
क्यों तुम अपनी बीवी पे नहीं मरते, तुम मेनाज में मैडम पे नहीं मरते हो, तुम तो उसके बगैर सांस नहीं ले सकते हो, इतना मरते हो तुम उस पे।
नहीं मर जाऊंगा तो फिर काम कैसे होगा, जीना पड़ता
है। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है,
मोहब्बत दिखाने के लिए जीना पड़ता है, ये मरने मराने वाली सब फिल्मी बातें मुझे।
वैसे भी तुमने जो है वो $1475 बचा लिए हैं, और तुम तो अब मरने का तो सवाल ही नहीं पैदा होता, तुम तो यूरोप के टूर पे जा रहे हो।
बहुत जबरदस्त, नहीं नहीं हो गया वो तो, टूर खत्म हो
गया,
छुट्टियां दी ना ये जब हम।
अच्छा अच्छा अच्छा, वो इसलिए नहीं हो रही थी न्यूज़ें,
इसलिए न्यूज़ नहीं हो रही थी,
वो
कंट्री
यूरोप के टूर पे थे। सारे जिस बंदे का 1475 बचेगा वो यूरोप के टूर पे नहीं जाएगा तो और क्या करेगा, जिंदगी तो एक ही दफा मिलती है ना।
क्या जिंदगी,
जिंदगी फिर ना मिलेगी दोबारा,
वही वाले हैं।
तुमने कहा मजे कर लो, जा सिमरन जी ले अपनी जिंदगी है,
ऐसे ही था
मैं नाम से तुम्हें कहा, जा आमिर जी ले अपनी जिंदगी,
वो ऐसा नहीं कहते, नो 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 नो, ये नहीं हो सकता, जा आमिर जी ले अपनी जिंदगी, नो नो, ये वाला डायलॉग नहीं चलेगा,
नहीं चलेगा,
नो,
ये डायलॉग सिर्फ माँ बाप
को पता, ये जी भी लेगा उसको पता है, कह दिया तो ये जी लेगा।
अच्छा अच्छा, हाँ
उसको बांध के रखो,
अच्छा ठीक,
छोड़ना नहीं,
नहीं वैसे भी अब तो तुमने $7 मिलियन कमा लिए हैं
अल्हम्दुलिल्लाह। मतलब मैंने कहा ना ये सारी जो इतने दिन नहीं था ना,
हाँ फील अक्षर खान,
तो वो इसीलिए मैं थोड़ा सा मैंने कहा यार इतने पैसे आ गए, अब खान करने की जरूरत ही नहीं है, एकदम आंख खुल गया, मैंने कहा चलो भाई बहुत हो गई है।
बेगम ने टुटा मार के नीचे गिराया,
भाई चलो आंख खोलो,
सुबह हो गई मामू,
सुबह हो गई, उठो, मैं अपने ख्वाबों में झरने
सुबह हो गई मामू,
क्या क्या कर रहे थे, $7 मिलियन
ओ मामू।
کبھی جناب شام ہو گئی مامو اور اب جانے کا وقت بھی جو آ گیا
ٹھیک ہے
تو آپ کا بہت شکریہ سر جی ہمارے ساتھ شامل ہونے کا اور ان شاء اللہ زندگی رہی اور آپ زندہ رہیں
ٹھیک ہے جی
ان شاء اللہ کل آپ سے پھر ملاقات
ہوگی
بہت شکریہ تمام سامعین کا اور ناظرین کا بہت شکریہ ہمارے ساتھ شامل ہوگا جناب بالکل ایوری ڈے منڈے ٹو فرائیڈے آپ پانچ سے لے کر تقریباً یہ چھ بجے تک آپ یہ گرما گرم رنگ رنگ خبریں سن سکیں گے شازیہ ملک کے ساتھ اور میں آپ کا ہوسٹ عامر احمد اب اجازت دیجیے اور بالکل دیکھتے رہیے ہمارا ای آواز ٹی وی ایسے ہی دیکھتے رہیے اور ریڈیو جیسے آپ سن رہے ہیں 6478724900 پر 6478724900 پر ہمارا 770 ریڈیو سنتے رہیں ای آواز ریڈیو ٹی وی ایسے ہی 24 گھنٹے سپورٹ کیجیے چلیں جناب پوری مینجمنٹ کی طرف سے آرفا مظفر صاحب کی طرف سے ماجد جمال صاحب کی طرف سے ہماری ٹیم ذیشان احمد آج ہمارے انجینئر ان کی طرف سے اور میں آپ کا ہوسٹ عامر احمد اب اجازت لوں گا انشاءاللہ زندگی رہی اور صحت رہی تو کل پھر آپ سے ملاقات ہوگی اس وقت تک کے لیے السلام علیکم
پیارا وعدہ ہے ان مت والی آنکھوں کا قسمت میں سوجھے نا کیا کر ڈالوں حال وہ سنبھال او ساتھیا او بلیا
کتنا پیارا وعدہ ہے ان مت والی آنکھوں کا قسمت میں سوجھے نا کیا کر ڈالوں حال وہ پیارا وعدہ ہے ان مت والی آنکھوں کا قسمت میں سوجھے نا کیا کر ڈالوں حال وہ سما پلکوں کی سب یہ چھایا کانٹے میرے تن میں ٹوٹے گلے سے تو نے سب لگایا
Thank you. मेरे नैना मेरे नैना फिर क्या कहना है क्या जाना मैंने पा लिया कितना प्यारा वादा है इन मत वाली आँखों का इस मस्ती में सूझे ना क्या कर डालू हाल मोहे संभाल
क्यों डरता है दिल प्यार हुआ इकरार हुआ है प्यार से फिर क्यों डरता है दिल क्यों डरता है दिल